भगवान फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कृष्ण श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप माया प्रधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री होली नेम वीक की जय। समवेत श्री हरिनाम प्रभु की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरियस टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गुरु हरे कृष्ण। ये क्या है? ये नौवां स्कंद क्यों लाके रखा है? दसवां स्कंद कहाँ है? किताब रखने वाला है? हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध। श्रीमद् भागवत के ही प्रारंभ में दूसरे स्कंध के दशम अध्याय की पहला श्लोक में ही भागवत के दस विषय वस्तु की पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अतः स्वर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमुतय मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो अभी हम ये सभी विषय को श्रवण कर करके आए। अभी लास्ट वाला बचा हुआ कौन सा? आश्रय, आश्रय तत्व। सब छोड़ छाड़ की किसकी शरण में जाना चाहिए? कौन हमारा आश्रय दाता है? सर्व तेजी जीबेर जीबेर कहाँ बास, रामानंद राय को पूछे चैतन्य महाप्रभु। जीवात्मा सब छोड़ छाड़ की कहाँ जाएगी, वास करेगा? किसकी शल्टर, किसकी संरक्षण में रहेगा? तो उन्होंने कहे कि श्री वृंदावन धाम जहां नित्य लीलारास, श्री वृंदावन धाम में जाकर जहां नित्य लीलारास चलता है वहां पर जाई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करके वहां रहेगा। गीता में भगवान भी वही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इस दशम स्कंद में विशेष रूप में आश्रय जो सभी के आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी संपूर्ण चरित्र की वर्णन इनके जन्म से लेकर तीनों स्थान में इनके मुख्य लीलाएं हैं, मथुरा द्वारका और वृंदावन, वृंदावन मथुरा द्वारका, ये तीनों लीलाओं को विस्तार रूप में 90 अध्याय में वर्णन की गई है, 90 चैप्टर है, 90 अध्याय में दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं को विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज विष्णुरात के रूप में जाने जाते हैं, वो जानते थे कि इनको माँ के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए थे, इसलिए विशेष रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में डिटेल जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे। यदि वो क्षत्रियों की दो वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, सूर्यवंश क्षत्रियो विशेष रूप में महिमान्वित है, क्योंकि उस वंश में, सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आविर्भाव हुए थे, जो कि रामायण के नाम से जिन लीलाओं को विशेष रूप में वर्णन है, और चंद्रवंश विशेष रूप में महिमान्वित है क्योंकि इस वंश में कृष्णचंद्र भगवान श्री कृष्ण इस वंश में आविर्भाव हुए। और परीक्षित महाराज विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण के बारे में डिटेल जानना चाहते थे, कि पहले नवम स्कंद के प्रारंभ से भी सुखदेव गोस्वामी कहे परीक्षित ने परीक्षित महाराज को, आप तो बार बार रामचंद्र जी की लीलाओं को सुन चुके हो, पहले रामचंद्र जी के बारे में डिटेल आप, हाँ, क्योंकि द्वापर युग में भी लोग रामचंद्र जी की लीलाओं को कहते थे, यहां तक कि माँ यशोदा ने भी सुनाती थी, किसको, कन्हैया को, है कन्हैया को जो माँ सुनाती थी, है कहते कि सो जा कन्हैया सो जाओ, वो कहानी कहती थी। एक राजा थे दशरथ, उनके चार पुत्र थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पितृ सत्य पालन करने करके रामचंद्र जी ने वन में गए, उनके साथ में उनके छोटा भाई लक्ष्मण और सीता जी गए, और दंडकारण्य में दंडकारण्य रावण आकर सीता को हरण किया, ये सुनते ही तुरंत उड़ जाते थे, कहें सो रहे तो जग जाते थे, लक्ष्मण मेरे धनुष लाओ, धनुष बाण लाओ। तो इसलिए कहानियां ये प्रसिद्ध था, द्वापर युग में भी तृतीया युग की रामचंद्र जी की लीलाएं सब सभी लोग को पता था, सुनते थे, इसके बारे में चर्चा चलता था। लेकिन इसके अलावा भी परीक्षित महाराज विशेष रूप में विष्णुरात नाम से जाने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण इनको माँ की गर्भ से रक्षा किए थे, और उनके बारे में डिटेल सुनना इनकी विशेष इच्छा थी, इसलिए दशम स्कंद में इसके विशेष रूप में विस्तार से वर्णन की गई है। किसके चरण में हमको आश्रय लेना चाहिए, आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो प्रारंभ से भागवत की प्रारंभ से ही जब ये अवतारों की निर्णय की जा रही थी तभी कह दिए थे सुखदेव गोस्वामी, एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे भगवान के अंश व अंश के अंश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसकी वर्णन प्रारंभ से सुखदेव गोस्वामी ने सूचना दिए थे। लेकिन वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं विस्तार रूप में दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़े मैंने इंट्रोडक्शन दी है, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा तो पूरे क्लास वही इंट्रोडक्शन में ही पढ़ते पढ़ने में चले जाएगा। हाँ, तो कह रहे कि प्रभुपाद जी कह रहे कि थोड़ा सा एक दो पारा पढ़ सकते हैं। प्रथम अध्याय का ये पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं दशम स्कंध के। प्रथम अध्याय के सारांश इस प्रकार है, इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के आठवें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब सुखदेव गोस्वामी जदुवंश था, उसी के साथ चंद्रवंश व चंद्रदेव के सूर्यदेव के वंश का वर्णन कर चुके तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे जदुवंश में बलदेव के साथ प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न कार्यकलापों का वर्णन करें। इसके बारे में भागवत की प्रारंभ से भी जो छह प्रश्न जो पूछे थे नैमिषारण्य के ऋषियां, जो छह मुख्य प्रश्न पूछे थे उनमें से एक प्रश्न था कृतवान किल कर्माणि, सिद्धर स्वामी कहते कृतवान किल बीर्याणि, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। प्रारंभ से ही छह प्रश्न में से एक प्रश्न ही है कि गूढ़ कपट मानुष, साधारण मनुष्य के समान लीलाओं को जो प्रकट किए हैं कृष्ण बलराम, इन लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहते थे नैमिषारण्य के ऋषियां, ये भी प्रश्न किए थे। तो उसी को यहाँ पर पहले तो भागवत की चर्चा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हुई, परीक्षित महाराज को सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी और उसी सभा में सुत गोस्वामी उपस्थित थे और उन्होंने जो सुना फिर वो जाकर नैमिषारण्य में 88,000 जो ऋषियों को वहां जाकर फिर सुनाए थे। तो इसलिए ये प्रथम अध्याय में विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण की कैसे प्राकट्य हुआ देवकी और वसुदेव की पुत्र के रूप में कैसे जन्म लिए उसी का वर्णन की जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं गोलोकपति स्वयं गोलोक विहारी ये ब्रह्मा जी की एक दिन में धरा पर अवतीर्ण होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार धरा पर आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने युग चक्र जाता है? 1,000 चतुर्युग चले जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में। लेकिन ये हर चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में नहीं आते हैं, वो आते हैं कृष्ण, लेकिन वो इसी भौतिक नेसरी इसी वैकुंठ जगत से एक कृष्ण लोक है, वैकुंठ जगत में भी एक कृष्ण लोक है, उसी कृष्ण लोक से प्रत्येक द्वापर में कृष्ण आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की एक विशेष मैंने जो सातवां मन्वंतर वैवस्वत नाम यही सप्तम मन्वंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर रेषे धामेर सहित है कृष्णेर प्रकाशे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते कि अभी जो शासन चल रहा है धरा पर ये कौन सा मनु का शासन चल रहा है? वैवस्वत मनु सातवें मनु के शासन चल रहा है और एक मनु एकस्तर चतुर्युग शासन करते हैं। इनमें से 27 चतुर्युग बीत चुका है वैवस्वत मनु के शासन काल का, अभी 28वें चतुर्युग चल रहा है और ये 28 चतुर्युग के अंत में जो द्वापर आता है तो उसी द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक बिहारी ये धरा पर अवतीर्ण होते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहे। इसलिए ये जो द्वापर युग गया ये कोई ये साधारण नहीं है, विशेष द्वापर युग है। इसलिए द्वापर के अंत में कौन सा युग आया? जो कली आया ये कली युग भी साधारण नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते हैं उसी प्रकार श्री गौरांग तो वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आते हैं तो उनकी बात में गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन इसको विशेष रूप में प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं गौरांग वो गोलोक से ही आते हैं, श्वेत दीप है गोलोक से ही पधारते हैं। लेकिन प्रत्येक कली की प्रारंभ में जो जुगावतार आते हैं वो केवल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग के अंत में है, जो कली के प्रारंभ में जो गौरांग आते हैं, ये विशेष रूप में क्या प्रदान करते हैं? नमो महा बधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। इसलिए ये जो युग अभी जो कली युग चल रहा है, प्रारंभ में जो आए गौरांग महाप्रभु, ये भी कोई साधारण कली युग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पधारे और ये सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किए हैं। अभी युग संध्या चल रहा है, अभी द्वापर समाप्त हो चुका है, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान ज्ञान धर्म ज्ञान ज्ञान आदि लेकर सुधाम में प्रत्यावर्तन किए हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा आलोक का प्रकाश रहता है, पूरे अंधार तुरंत नहीं आता है, इसको कहते संध्या या गोधड़ी समय। ये समय लगभग 10-15 हजार साल 5 हजार साल बीत चुका है और 10 हजार साल बाकी है, इसलिए इस समय में भगवान श्री कृष्ण के माने इसी संध्या समय में गोधड़ी में ही गौरांग अवतीर्ण होकर हमें बुला रहे हैं। जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले जीव जागो, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा भजीब बोली आए से संसार भीतरे, भजीब संसार भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे, भूलिया रहिले तुमी तुमारे लईते आमी हईनु अवतार, तुमारे लईते आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार, एनेची औषधि माया नासिवार लागी, एनेची एने छी औषधि माया नासिवार लागी, एने छी औषधि माया हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु सेई हरि नाम मंत्र लईल मागिया, सेई हरि नाम मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली युग में भगवान अपने दिव्य नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम दशम स्कंद पढ़ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भी एक श्लोक कम से कम भी चर्चा करेंगे, क्योंकि होली नेम का सप्ताह चल रहा है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा होली नेम के बारे में भी इसमें जोड़ लेंगे। तो पहला श्लोक इस अध्याय के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय, श्री राजो वाच कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राजं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीराजो वाच कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राजं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीराज उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राजं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। शब्दार्थ, श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, कथित पहले ही वर्णित हो चुका, वंश विस्तार वंश का विस्तार के वर्णन, भवता आपके द्वारा, सोम सूर्ययो चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के, राजाओं का, च तथा उभय दोनों वंश्यानाम वंश के सदस्यों का, चरितम चरित्र, परम श्रेष्ठ, अद्भुतम तथा अद्भुत। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंश का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशेष वर्णन किया है वा विशद वर्णन किया है। तात्पर्य, नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया है कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाओं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गए। परीक्षित महाराज, कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, इसीलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधाधितार्थे हत्वारि पुंसुत सतानि कृतरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुष क्रतुभिः समीज्ञे आत्मानमात्मः निगमं प्रथयाञ्जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंध का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों का साथ विवाह किया जो स्त्री रत्ना थी। उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ का संपन्न किए। जदुवंश सोम अर्थात चंद्र देव से चले आ रहे हैं, कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसा व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे जादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश है। चंद्रग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य के राजा से चले आने वाला वंश। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतया वे क्षत्रिय वंश में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांत तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे जदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में 24वें अध्याय में जदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी गई है। सोमवंश तथा सूर्यवंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राजा चो उभय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। फिर भी वे सोमवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम्। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिबिंब है, जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय की 20वें श्लोक में कहा गया है। वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होते हैं। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रह तथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे भगवद्गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस श्लोक का कभी संहार नहीं होता। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक प्रकृति उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन गोलोक वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। नवम स्कंद के उपर्युक्त श्लोक जातो गतः पितृगृहात का वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यते सतारिणी नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता समसूर्ययो राज्ञां च उभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंश का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है जो कि नवम स्कंद के 24वें अध्याय में विस्तार से वर्णन की गई है और इस अध्याय में दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार देवकी और वसुदेव की पुत्र के रूप में आविर्भाव हुए उसी के वर्णन की जाएगी। तभी लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म तो लिए हैं वसुदेव की पुत्र के रूप में लेकिन जन्म लेने के बाद तुरंत कहां चले गए वृंदावन चले गए गोकुल वृंदावन गोकुल में पहले बलराम वहां पर थे बलराम रोहिणी माता थी बलराम जी की जन्म वहां पर हुई कहां गोकुल में बलराम जी की जन्म हुई इसमें कोई डाउट नहीं है। बलराम जी की जन्मस्थान कहां पर है कहां पर बलराम जन्म लिए इसमें कोई डाउट नहीं है गोकुल में ही जन्म लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म के बारे में थोड़ा सा वैष्णव में मतभेद है कि जो साधारण कंस की बंदीशाला में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि के अर्धरात्रि के समय में देवकी की गर्भ से जन्म हुए भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही प्राय जनताओं में ये प्रचलित है। लेकिन कुछ अन्य पुराण हरिवंश पुराण आदि अन्य पुराणों की माध्यम से बा अन्य शास्त्रों से रुद्रजामल हरिवंश पुराण आदि अन्य शास्त्रों के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि माँ जशोदा जो जन्म दी थी वो एक लड़की को केवल जन्म नहीं दी थी वो एक लड़का को भी जन्म दी थी दोनों एक लड़का एक लड़की। इसलिए जब वसुदेव कृष्ण को लेकर जाते हैं गोकुल में लेकर छोड़ते हैं तो ये जो कृष्ण वसुदेव ने जो लेके गए थे वो जशोदा नंदन कृष्ण के साथ में समा जाते हैं उनमें से एक हो जाते हैं और वो बालिका को जो उनके जन्म लिए थे जोगमाया को लेकर वो वापस आते हैं कौन वसुदेव ने वापस लेकर आते हैं जोगमाया देवी को। इसलिए कुछ राक्षसों को मार धर करने का था इसलिए भगवान श्री कृष्ण कंस की बंदीशाला में वसुदेव देवकी की पुत्र के रूप में जन्म लेकर भी गोकुल में गए क्योंकि यदि वहां ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जन्म लिए थे लेकिन उनकी काम नहीं है राक्षस को मारना धरना ये भगवान विष्णु की काम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं कि आराध्य भगवान
ब्रजे सतनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमार्थमहा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्रोदर नापरः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये चैतन्य महाप्रभु की मतामत है। जो गौड़ीय वैष्णव है उनके आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। जो जसोदा की लाल है, जसोदा नंद जसोदा की लाल है, ये ब्रजेंद्र नंदन ही गौड़ीय वैष्णव की आराध्य देव है, आराध्य भगवान ब्रजे सतनय। उसी प्रकार उनके नित्य धाम वृंदावन भी उनके हमारे वैष्णव के नित्य आराध्य स्थली है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की जो मार्ग है वो ब्रजवासियों की मार्गानुसरण करना, विशेष रूप में ब्रजवधु गोपियों की मार्गानुसरण करना, ब्रजवधु वर्ग न जा कल्पिता। ये प्रमाण कहाँ पर है? श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम। ये अमल प्रमाण ग्रंथराज श्रीमद भागवत नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में भी लिखे हैं कि विशेष रूप में पांच अध्याय जो है 29वां अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक जिसमें रास पंचाध्याय की चर्चा की करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो जिस प्रकार ब्रजवधुगण भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किए, ऐसे ही भगवान के चरण में सब कुछ निछावर कर देना, ये ही जीवन का लक्ष्य है, ये ही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने की। श्री ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। चैतन्य महाप्रभु के मत है कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, मुख्य प्राप्त करना नहीं है। साधारण तो सभी लोग सोचते हैं कि चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मुख्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, प्रेम पुमार्थ महान है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना ये ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ये प्रमाण भागवत में ही दी गई है, भागवत में ही इसकी विशेष वर्णन है। रूप गोस्वामी विशेष रूप में हम रूपानुग वैष्णव है, रूप गोस्वामी की अनुजाई है। प्रत्येक दिन हम उनके प्रणाम मंत्र भी गाए थे, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदांतिक। कब वो रूप गोस्वामी जो स्वयं रूप मंजरी रूप गोस्वामी कृपा करके मुझे अपने चरण कमल में आश्रय प्रदान करेंगे हैं? उनकी चरण कमल की आश्रय का याचना करते हैं। रूप गोस्वामी विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को रचना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर द्वारका लीला अंत तक, मुसल लीला तक, संपूर्ण लीला को एक किताब में रचना कर रहे थे। लेकिन कुछ सजेशन लेने के लिए गौरांग महाप्रभु के पास जा रहे थे। उड़ीसा के बॉर्डर में एक गांव आता है सत्यभामापुर, सत्यभामापुर में रात्रि में विश्राम लिए। रात्रि में सत्यभामा जी ने सपने में आए, कहे कि रूपा तुम्हारे एक नाटक बहुत अच्छा होगा, उत्कृष्ट होगा, यदि तुम वृंदावन लीला को द्वारका लीला से सेपरेट करोगे, इसको एक लीला में एक ही ग्रंथ में मत लिखना, इसको दो अलग अलग किताब रखनी है, वृंदावन लीला अलग और द्वारका लीला अलग, क्योंकि सत्यभामा को भी चिंता हो गया यदि ये एक ही ग्रंथ में पूरा रहेगा तो हीरो तो कृष्ण है लेकिन हीरोइन कौन बन जाएगा है? राधा रानी। तो इसलिए वो कहेगी नहीं, सेपरेट कर, द्वारका लीला को सेपरेट करना है, इसको ब्रज लीला के साथ मिलाना नहीं, मेरे आशीर्वाद से तेरे नाटक बहुत प्रशंसनीय होगा। रूप गोस्वामी सोचे क्या करूं, ये तो सत्य महाबाजी ने चाहते ऐसा, ऐसे जाकर फिर पुरी तक पहुंचे। पुरी में जाकर हरिदास ठाकुर के पास, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास में वहां रहते थे, वहीं विश्राम रहते थे। सनातन रूप ये कोई जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, हरिदास ठाकुर भी वहीं रहते थे, अत्यंत दैन्यता के कारण वहीं रहकर
जगन्नाथ मंदिर के चक्र को, चक्र पतित पावन पताका को देखकर वहीं प्रणाम करके ही वहीं बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने आए आकर कुछ देखे, रूप गोस्वामी जो लिख रहे थे उसमें कुछ पेज लेकर पढ़े हैं, कहे कि देखो रूप कृष्ण को बाहिर ना करिय ब्रज हईते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जाए कहाते। देखिए रूप कृष्ण को ब्रज की बाहर नहीं लेना, कृष्ण कभी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं। इसके बाद गौरांग महाप्रभु ने रुद्र जामल से कोट किए, कृष्ण एक जदु संभूत जस्तु ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। रुद्र जामल से कोट करके महाप्रभु ने कहे कि देखो रूप गोस्वामी, ये रुद्र जामल के प्रमाण है कि कृष्ण एक जदु संभूत, जदुकुल में जो जन्म लेने वाला जो कृष्ण है वो कृष्ण और जस्तु ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन जसोदा नंद की लाला, ये दोनों में फर्क है, फर्क है फर्क नहीं भी है, फर्क नहीं भी है फर्क भी है। यचिंत्य भेदावेद तत्व है, इसलिए कहे कि जस्तु ब्रजेंद्र नंदन है, ये ब्रजेंद्र नंदन जो है जदुनंदन वो जाते हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति, एक पैर भी वृंदावन से बाहर नहीं रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहे कि कृष्ण को ब्रज की बाहर नहीं निकाल लेना, चैतन्य महाप्रभु ने कहे। तो इसलिए रूप गोस्वामी दो नाटक लिखते हैं, ललित माधव और विदग्ध माधव। लेकिन फिर भी जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, साधारण पब्लिक में हम इस रहस्य को नहीं बताते हैं, हम जानते कृष्ण ही कृष्ण है, बस कृष्ण ही वसुदेव नंदन है, वो जसोदानंदन भी है और नंदनंदन भी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि देखो कृष्ण शब्द का बहुत अर्थ है, लेकिन मैंने ज्यादा अर्थ नहीं मानता हूं। कृष्ण शब्देर बहु अर्थ नामानी, जसोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्र जानी। चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण शब्द का बहुत सो मेनी मीनिंग्स, लेकिन मुझे केवल दो ही अर्थ पसंद है, कौन सा? श्याम सुंदर जसोदानंद, जसोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्र जानी। कृष्ण जसोदा की लाल है, जसोदा की वात्सल्य में वो अधीन है, और राधारानी इनको पुकारती है किस रूप में? श्याम सुंदर कहकर पुकारती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये दो नाम मुझे, कृष्ण के बहुत नाम होने पर भी दो नाम मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने कंस की बंदीशाला में भी देवकी की गर्भ में प्रवेश हुए। आगे श्लोकों में इसके वर्णन की जाएगी किस प्रकार देवता लोक ने सब स्तुतियां करेंगे, देवताओं की स्तुति विशेष प्रसिद्ध है देवलोक से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में व ब्रज में रहे लगभग 10 साल 8 महीने, 11 साल से कुछ कम रुके थे, और जब जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, देखते हैं कि ये अक्रूर घाट है, अक्रूर घाट से अक्रूर घाट में कहते कि यहीं पर कौन रह गया, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और आगे नहीं गए, वहीं रह गए, ये वृंदावन की सीमा को क्रॉस नहीं किए। आज भी ब्रजमंडल परिक्रमा करते तो कहते हैं कि ये जो अक्रूर घाट है यही ये सीमा है वृंदावन की, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इससे बाहर नहीं गए। स्वयं रूपे गोप वेश आमी गोप ज्ञान, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। स्वयं रूपे गोप वेश, कृष्ण जब अपने स्वयं रूप में, स्वयं भगवान के रूप में वो है गोपाल, वो गोप वेश है, ग्वाला है, वो गाय चराने वाले हैं, और गोपियों के साथ में नृत्य करने वाले हैं। दिन में गाय चराना, रात्रि में रास रचना, ये है आदि भगवान श्री कृष्ण, मूल भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूपे गोपवेश आमी गोप ज्ञान। और जो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र है वासुदेव, क्षत्रिय क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान, उनकी इच्छा ये अभिमान रहता कि मैं वसुदेव के पुत्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, है मुझे ग्वाला का ड्रेस नहीं चाहिए, है बिना जूता छता ये सब क्या है, नहीं चलेगा। है भगवान जब कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं कभी छत्री धारण नहीं किया, कभी जूता नहीं पहने, जूता नहीं धारण करते, इस नंगे पैर में ब्रज की धूल में घूमते रहे हैं, कभी छत्री भी धारण नहीं किए, जूता छत्री ये सब कुछ नहीं धारण किए हैं, गोला के ग्वाल ग्वाला के मुकुट मुकुट भी नहीं धारण किए हैं, पगड़ी ग्वाला है ग्वाला की पगड़ी बांधते थे, मयूर पंख डालते थे हैं। ये कृष्ण स्वयं रूपे गोपवेश है और उनके अभिमान क्या रहता है, आमी गोप ज्ञान, मैं गोपो हूं, ये ग्वाला हूं, नंद के लाला हूं, है ये अभिमान उनके पास रहता है, है? और उनके शरीर में समाकर थे वासुदेव कृष्ण, है वसुदेव के पुत्र। जब राक्षसों की मारधर काम काम खत्म हो गया वृंदावन में, अभी कंस को मारने के लिए जाना पड़ेगा, तब तो इसलिए अक्रूर घाट से कृष्ण आगे, वसुदेव कृष्ण आगे बढ़े। जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से वो अलग हो जाते हैं तभी सोचते कि ये ड्रेस अच्छा नहीं है, ये क्या है, ये ग्वाला फला नहीं चलेगा है। बोले क्या अभी राज का राज ड्रेस चाहिए, राजा की भेष चाहिए, क्षत्रिय ज्ञान आमी क्षत्रिय ज्ञान है, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। तो कहे कि धोबी सुखा रहा था, सो है ड्रेस सो सुखा रहा था कंस का है, राजा की ड्रेस सो सफाई करके सो आयरन रख रहा था, बोले कि ये चाहिए, बोले ये सो ड्रेस हमको दे दो है, अभी हम जाएंगे राजा राजा को मिलने के लिए जाएंगे, राजभेष पहनेंगे, ये ग्वाला भेष नहीं चलेगा है, ये ग्वाला का भेष ये नहीं चलेगा, तो इसलिए धोबी को कहे कि ड्रेस दे दो। अब धोबी देने के लिए तैयार नहीं था तो एक इसका एक एक हाथ में, हाथ में ही अंगानी जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती है, एक प्रहार के बाद उसका गर्दन छिटके अलग हो गया शरीर से, गर्दन को अलग कर दिया शरीर से, बस सारे कपड़ा ले गया और दर्जी भी आ गए आके साइज कर दिया काट के पहन लिए है। इसलिए भगवान वसुदेव पुत्र के रूप में उनकी क्षत्रिय अभिमान है, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय राजा के अभिमान रहता है। लेकिन जब ये नंदनंदन के रूप में रहता था वो कहते कि मैं ग्वाला हूं है? लेकिन हमारा आराध्य देव कौन है, कौन आराध्य किसको है, है? चैतन्य महाप्रभु कहते कि हमारे जो आराध्य देव है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम है रम्या काचित उपासना, ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण के देखिए लीलाओं को जैसे हम पढ़े सारे 24 अवतारों की लीलाओं को, इसमें वर्णन की गई है भागवत में, एक एक करके सारी लीलाओं को पढ़ते 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 आए नवम स्कंद में, विशेष रूप में रामचंद्र जी की लीलाओं को वर्णन की गई है, और दशम स्कंद में तीनों भाग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार से सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे, तो इसको हम डिटेल पढ़ना चाहिए, इसके लीलाओं का हम डिटेल अध्ययन करना चाहिए, और साथ साथ पब्लिक में हमें ये सब ब्रजेंद्र नंदन जसोदा नंदन बा देवकी नंदन ये सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल भक्तों के बीच में। प्रभुपाद जी भागवत में बा कृष्ण बुक में कहीं लिखे नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार ये तो द्वापर की कथा, लेकिन अभी कलि युग में यदि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन है, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन, भक्ति जोग ही हमारा धन है, भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्ति का अर्थ क्या होते हैं, भक्ति का अर्थ वो कहते कि कई अर्थ है भक्ति का, है कई डेफिनेशन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परवर्तन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, इसको भक्ति कहते हैं। वह कहते कन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत मानुकुल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति कहते कि सब प्रकार के अभिलाषा से मुक्त होकर है, कर्म ज्ञान से मुक्त होकर विशुद्ध भाव से भगवान की सेवा की अभिलाष रखना है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भक्ति जोग ही हमारा धन है, लेकिन भक्ति जोग का संक्षेप अर्थ क्या है, कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, कृष्ण नाम को उच्चारण करके जो आंख से अश्रु बहना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नयनात गलदश्रु धाराया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब उस दिन आएगा प्रभु आपकी नाम गोविंद कृष्ण उच्चारण करते ही मेरे आंख से अश्रुओं की धारा बहेगा, आप तो सारे शक्ति आपके दिव्य नाम में रखे हैं, लेकिन मैं इतनी दुर्भाग्य है इसमें मेरा थोड़ा सा भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। दूसरे श्लोक में शिक्षाष्टकम में ही महाप्रभु कहते नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश मिहा जनिना अनुराग है। इस कलि युग में यदि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनके दिव्य नाम के ही आश्रय लेना पड़ेगा। हरे रणाम हरे रणाम हरे रणाम इव केवलम कलौ नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्यथा। ये भागवत पढ़कर यदि हम भागवत के सारांश को नहीं समझेंगे, भागवत का सारांश भागवत में ही दी गई है, इसलिए बारह स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव गोस्वामी कहते हैं बारह स्कंद में कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परंग रजत। वह भागवत के अंतिम श्लोक कहता है, क्या अंतिम श्लोक भागवत का, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परम, में परम पुरुष हरि को प्रणाम करता हूं, जिनकी नाम संकीर्तन से ही नाम संकीर्तन सर्व नाम संकीर्तन जस्य सर्प सर्व पाप विनाश समस्त कलमश से व्यक्ति को रहित कर देता है, जिनके नाम संकीर्तन माध्यम से हम समस्त कलमश से रहित होकर भगवत धाम को प्रवेश करने में योग्य बन जाते हैं, ये भागवत के सारांश है। भागवत कह के विशेष रूप में कलि युग के मनुष्यों के लिए भागवत के सारांश ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से ही पहला स्कंद में ही श्रील प्रभुपाद जी ने जो इंट्रोडक्शन लिखा है आमुख, उसमें पूरा चैतन्य महाप्रभु का ही जीवनी जीवन चरित्र को वर्णन किया, क्योंकि भागवत को समझने वाले कौन है, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो ही श्रीमद् भागवत को ठीक से समझे हैं। इसलिए भागवत को समझकर वो किए, भागवत समझने के बाद वो क्या कर रहे थे, सदा नाच रहे थे, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, भागवत को इन्होंने आस्वादन केवल अंतरंग भक्त में से कर रहे थे, जैसे गोरा गदाधर पंडित के मुख से भागवत सुनते थे अंतरंग भक्त के बीच में, पब्लिकली सप्ताह करके भागवत नहीं सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु सप्ताह नहीं, ऐसे लाखों लोगों के बीच में भागवत नहीं कहते थे, लाखों लोगों के बीच में क्या करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी चैतन्य महाप्रभु जो कि भागवत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है, भागवत के रहस्य को जो जानने वाले हैं, जिनकी निर्देशन में छह गोस्वामी भागवत को पढ़े हैं, बा जीव गोस्वामी छह संदर्भ लिखे हैं, अन्य भागवत लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु भागवत को पढ़ के भागवत का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किए हैं, नाम संकीर्तन है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार है। इसलिए सारे भागवत को हम पढ़ने के बाद यदि ये नाम संकीर्तन नहीं इसको यदि नहीं भाग नहीं लिए नाम संकीर्तन में, तो फिर हमारे कोई लाभ नहीं है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई किसके प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज, आप बताए कि यशोदा कृष्ण और देवकी कृष्ण जो भी है वो भक्त पब्लिक पब्लिक के सामने ये नहीं बोलना चाहिए, भक्तों के सामने ही बात करना चाहिए। तो वृंदावन में जितना कंस ने राक्षस को भेजा वो स्वयं गोपाल कृष्ण तो सबको बध किया, कृष्ण तो बध किए ना,
कृष्ण
विष्णु विष्णु के हाथ से बध हुआ ना कृष्ण
विष्णु, इसीलिए तो उनके साथ जाकर वो उनके साथ में समा के रहे, ये सब विष्णु के काम है। विष्णु नहीं मारे कृष्ण, किसको नहीं मारते? कृष्ण श्री बंसी बजाना और गाय चराना उनके ही काम है, ये वस्त्र धारण नहीं करते। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल सही बलराम हैल निताय है। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है कमेंट? यस हाँ,
हरे कृष्ण। जैसे महाराज जी आप पहले बोले कि वृंदावन धाम जो है बहुत अच्छा है, वहां पे कभी कुछ भक्त लोग सोचेंगे वृंदावन धाम में सब लोग जाएंगे, तो वृंदावन धाम में जाना चाहिए ना? वृंदावन का धाम की चेतना में कोई भी अवस्था में कहां भी रहे उस चेतना में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए?
वृंदावन गोस्वामी लोगों के लिए है, हैं? रूपा जी करते वृंदावन गोस्वामियों के स्थान है, वहां पर सभी लोग के लिए नहीं है। गोस्वामी लोग जो गोस्वामी के लेवल में है वो वृंदावन में रह सकता, नहीं तो वृंदावन में जो अपराध करेगा तो उसको हजार गुण भोगना पड़ेगा, 1000 गुण भोगना पड़ेगा है। जो वृंदावन में भजन करेगा तो वो भी 1000 गुण अधिक उसको लाभ मिलने वाला है। इसलिए जो गोस्वामी है वो भजन करते हैं तो इनको बहुत जल्दी प्रोग्रेशन के मैंने बहु कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त होता है, और जो नहीं अपराध करेगा तो वहां जाकर तो उसके सारे आध्यात्मिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए वृंदावन विशेष रूप में गोस्वामियों के लिए, 6 गोस्वामी को प्रभु ने महाप्रभु ने वृंदावन वास की अधिकार दिया, जगदानंद पंडित को भी नहीं। जगदानंद पंडित कहे कि जाना और वापस आना, वहां से तुम वृंदावन रहने के लायक नहीं है, हैं? कि वृंदावन में रहने से हम धाम अपराध से ही बच के रहना है, धाम अपराध हमारे जो स्वभाव है तो हम धाम अपराध करेंगे नाम अपराध करेंगे है? तो इसलिए खाली वृंदावन में कोई फ्लैट खरीद लेने से वृंदावनवासी नहीं बनता है, चेतना मेन है। चेतना कहाँ पर है? चेतना यदि वृंदावन में रहकर चेतना सदा बॉम्बे में लगा हुआ है तो फिर वो वृंदावनवासी कहाँ है? वरन कोई वृंदावन में रह नहीं बॉम्बे में रहकर जो वृंदावन वृंदावन की चिंतन में रहता है तो सही है, है? अपराध करके आप वृंदावन में जाकर अपराध करके लाइफ क्यों नष्ट करना, आध्यात्मिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ओके यस
हरे कृष्ण। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु जब भी रामकेली गए थे,
रामकेली
तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली वृंदावन जाने का था तो नवद्वीप होके रामकली गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु का पीछे पीछे हजारों नवद्वीपवासी वृंदावन जाने के लिए उनका पीछे पीछे जा रहे थे, तो सनातन गोस्वामी मना किए चैतन्य महाप्रभु को, तो ऐसा नहीं जाना चाहिए था, तो समझाए तो चैतन्य महाप्रभु कन्हैयानाथ साल से फिर वापस रात रात आ गए।
वो चैतन्य महाप्रभु जाने का मेन काम था रूप सनातन को उद्धार करना है। उस ट्रिप का महाप्रभु के जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, रूप और सनातन को उद्धार करना, इसलिए रामकली से दोनों को उद्धार करके फिर वापस आए हैं। वो दोनों को कृष्ण वृंदावन भेजने जाने के लिए उपदेश देकर फिर वहां से आ गए।
तो फिर दो साल के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु फिर अकेले गए
झारखंड होकर गए फिर बिहार।
लेकिन अभी हमारा जो इस्कॉन तरफ से इस्कॉन तरफ से अभी हजार हजार लोग वृंदावन यात्रा जाते हैं, वो उसके बारे में क्या
बोलना? नहीं, नहीं, हजारों संख्या में लोगों को लेकर वृंदावन जाना, उस समय भय था क्योंकि ये भय करते थे कि ये जो नवाब है मुसलमान के नवाब कौन, हुसैन शाह, हाँ, ये सोचता था कि ये व्यक्ति चल रहा है इसके साथ में लाखों लोग क्यों जा रहे हैं, लाखों लोग इसके क्यों चल रहे हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी सोचते थे कि मुसलमान है, मुसलमान है, कुछ ना कुछ हानि हानि पहुंचा सकता है, मुसलमान है कुछ हानि पहुंचा सकता है। ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकलव्य प्रभु की जय। एनी कमेंट, यू हैव एनी कमेंट? श्रील प्रभुपाद की जय।
हाँ।